आपका सुतीक्ष्ण आपकी प्रतीक्षा में है। मई सन 1977 में मैं पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ आयोजन संपन्न कराने हेतु गुजरात दौरे पर था। मेरे साथ आंकला जिला खेड़ा के डॉक्टर गोविंद भाई पटेल भी थे। नर्मदा नदी पार बड़ौदा जिले के एक गांव में पंचकुंडीय यज्ञ के संयोजक एक संत थे। बड़ी श्रद्धा से उन्होंने तीनों दिन के कार्यक्रम संपन्न कराए।
यज्ञ की पूर्णता के पश्चात जब हम लोग चलने लगे, तब उन्होंने मुझसे कहा, कृपया आप गुरुदेव से कहें कि आपका सुतीक्ष्ण आपकी प्रतीक्षा में है,
अब मुझे इस धरती से उठा लेना व अपने पास बुला लेना। हमने शांतिकुंज आकर गुरुदेव से कह दिया।
बात आई गई हो गई।
पुनः जब गुरुदेव सन 1980 में गायत्री शक्तिपीठों की प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम दौरे पर गुजरात गए, तब श्यामलाजी से छिपड़ी होते हुए बड़ौदा पहुंचे।
हमने गुरुजी को याद दिलाया कि यहीं पर निकट में एक संत आपकी प्रतीक्षा में थे।
गुरुदेव ने उनके लिए एक कार्यकर्ता के हाथ कुछ फूल भेज दिए।
सुबह जब हम लोग बड़ौदा से निकल रहे थे, उसी समय सूचना मिली कि उक्त संत ने शरीर त्याग दिया है।
तब पूज्य गुरुदेव ने पुनः उनके लिए अंतिम पुष्पांजलि स्वरूप पुष्प दिए व एक कार्यकर्ता को भेजा। इस प्रकार उन्होंने अपने सुतीक्ष्ण का सम्मान किया, प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई।
4 नवंबर 1981 की बात है।
पूज्य गुरुदेव शक्तिपीठों के दौरे पर थे।
हम गुरुदेव के साथ थे।
महुआ जिला भावनगर गुजरात में हम लोग श्री छबील भाई मेहता के घर ठहरे थे।
उस घर में भूतों का कब्जा था,
शायद इसीलिए छबील भाई स्वयं उस घर में नहीं रहते थे।
हमें यह बात मालूम नहीं थी। रात में सब काम समाप्त करते करते मुझे 1 बजे बज गया। 1:10 पर जब मैं सोया तो प्रेत परेशान करने लगे। कुछ देर तक तो मैं उनसे जूझता रहा, पर फिर मुझे लगा कि पूज्य गुरुदेव से कहना चाहिए।
गुरुजी तब तक सो चुके थे।
मैं उनके कमरे में गया, धीरे से गुरुदेव के पैर का अंगूठा पकड़ा। गुरुजी तुरंत उठ बैठे, जैसे वह मेरा इंतजार ही कर रहे हों।
बोले, क्या है बेटा? मैंने कहा, पिताजी प्रेत परेशान कर रहे हैं। गुरुदेव बोले, अच्छा बेटा, चल मैं देखता हूँ। गुरुदेव हॉल में आए, मेरे बिस्तर पर लगभग 5 मिनट बैठे, ध्यान किया, फिर बोले, अब सो जा बेटा, उनकी मुक्ति हो गई। मुझे लेटते ही नींद आ गई, फिर किसी ने मुझे परेशान नहीं किया। गुरुजी सदा प्रोत्साहन देकर परिजनों का उत्साह बढ़ाते रहते थे।
लोहरदगा बिहार के 108 कुंडीय यज्ञ की बात है।
इस प्रसंग को इंदिरा बहन भी सुनाती हैं। गुरुदेव के आने से पूर्व तक कार्यक्रम श्री शिव प्रसाद मिश्रा जी ही संभालते थे। उस दिन पूज्य गुरुदेव को जरा देर से यज्ञ स्थल आना था, अतः श्री मिश्रा जी कर्मकांड संपन्न कराते हुए बार बार मुड़कर देख रहे थे। पूज्यवर नियत समय पर पहुंच गए और मिश्रा जी के पीछे जाकर खड़े हो गए। उन्होंने सबको इशारा कर दिया कि वे न बताएं, अन्यथा उन्हें डिस्टर्ब होगा।
किसी ने नहीं बताया कि गुरुजी आ गए हैं,
पर मिश्रा जी का मन नहीं मान रहा था।
इतना लेट गुरुजी हो नहीं सकते, अभी तक मुझे सूचना कैसे नहीं मिली। एकाएक वे पूरा पीछे घूम गए,
देखा तो गुरुदेव पीछे खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे।
अब तो वे खुशी से उछल पड़े।
पूज्य गुरुदेव की जय, गगनभेदी नारों से पूरा पंडाल जय घोष करने लगा। देखा, मैंने कहा था न डिस्टर्ब होगा, कहते हुए पूज्यवर ने मंच संभाल लिया। अपने शिष्यों को आगे बढ़ाने हेतु वे भरपूर अवसर देते थे।
देर से जाते व चुप बैठ जाते ताकि उनके मन में गुरुदेव के आने से संकोच न हो।
शांतिकुंज में भी गुरुजी ने देवकन्या सात्र, महिला सात्र, प्राण प्रत्यावर्तन सात्र, कल्प साधना सात्र, चांद्रायन व्रत इत्यादि बहुत सारे सात्र, साधनाएं व प्रशिक्षण सत्र कराए।
उन सबके माध्यम से हम सब लोगों को तैयार किया और फिर स्वयं तो उन्होंने क्षेत्रों में जाना ही छोड़ दिया। हम ही लोगों को प्रचार प्रसार के लिए यहाँ तक कि बड़े बड़े कार्यक्रमों में भेजने लगे थे। शक्ति वे देते रहे, काम हम लोग करते रहे। उनकी शक्ति का एहसास आज भी हम लोगों को बराबर होता है।
घास फूस का प्रज्ञापीठ शक्तिपीठों की प्राण प्रतिष्ठा के समय का एक प्रसंग है। महासमुंद के वरिष्ठ कार्यकर्ता पम ज्वाला प्रसाद दुबे ने एक घास फूस की झोपड़ी बना ली, उसमें गायत्री माता का चित्र रख दिया तथा कुछ पुस्तकें प्रचार हेतु रख दी व मन में सोच लिया कि इसका गुरुदेव द्वारा उद्घाटन कराऊंगा। चूंकि स्थान रास्ते में ही पड़ता था, अतः एक कार्यकर्ता को गुरुदेव की गाड़ी रोकने हेतु खड़ा कर दिया व स्वयं कुछ तैयारी करने चले गए। कार्यकर्ता का ध्यान थोड़ा चूक गया और इतने में पूज्य गुरुदेव की गाड़ी आगे निकल गई, किंतु तब तक ज्वाला प्रसाद जी ने आकर साथ जा रही दूसरी गाड़ी को रोक लिया। उन्हें वह स्थान दिखाया व समझाया कि गरीब जनता कहां से शक्तिपीठ हेतु खर्च कर पाएगी, अतः गांव गांव में साहित्य प्रचार हेतु मैंने प्रज्ञापीठ बनाया है, गुरुजी को जरूर बताना, अवश्य बताएंगे, कहकर दूसरी गाड़ी विदा हुई। ज्वाला प्रसाद जी थोड़ा निराश हो गए, अब शायद ही गुरुदेव आ पाए। मन को जैसे तैसे समझा लिया। बात गुरुदेव के कानों तक पहुंची। गुरुदेव हंसे और बोले, ये ज्वाला भी कुछ न कुछ करता ही रहता है। अच्छा, उसे जरूर देखेंगे। लौटते में गाड़ी रोकना। निर्देश भला अमान्य कैसे होता। लौटते में वहां गाड़ी रोकी गई। गुरुदेव ने उसे देखा, खूब हंसे और कहा, ज्वाला, इसका भी उद्घाटन करूं। ज्वाला प्रसाद जी ने चुपचाप सिर हिला दिया। दीपक जल उठे।
गरीबों की भावना ने भगवान का दिल छू लिया था और उन्होंने भी उन्हें हृदय से अपना मान लिया।
आज भी छत्तीसगढ़ प्रांत गुरुदेव का हृदय माना जाता है।
तूने तो मुझे बुक सेलर बना दिया।
एक दिन एक परिजन गुरुजी के पास आए व बड़ी बहादुरी प्रदर्शित करते हुए बोले, गुरुजी मैंने 35-40 अखंड ज्योति पत्रिका के ग्राहक बना दिए हैं। उसकी बात सुनकर गुरुजी थोड़ा गंभीर हुए व कहा, बेटा तूने तो मुझे बुक सेलर बना दिया।
कभी देखा कि जिन्हें तूने ग्राहक बनाया है वह पढ़ता है कि नहीं? उसके पास बैठ, उससे चर्चा कर, पता चल जाएगा कि पढ़ता भी है कि नहीं। कार्यकर्ता ने जाना कि अभी तक साहित्य प्रचार की बात ही समझ में आई थी, पढ़ाने की नहीं। उसे लगा कि शायद पूरे पृष्ठ तो मैं ही नहीं पढ़ पाता, फिर दूसरे से क्या पूछूं।
और उसी क्षण उन्होंने पढ़ने व पढ़ाने की प्रतिज्ञा ली।
ऐसे थे पूज्यवर, अति उत्साह को क्रियात्मक ढंग से वास्तविकता की ओर मोड़कर सहज भाव से अपना बना लेते थे और बाद में अतीव दुलार कर इतना अनुदान देते कि व्यक्ति निहाल हो उनका ही होकर रह जाता था। बेटा तेरे दो आने खर्च हो गए।
आगरा के पुराने सक्रिय कार्यकर्ता श्री पन्नालाल अस्थाना जी ने महापूर्णाहुति के कार्यक्रम में 1,00,000 रुपये से अधिक मूल्य का युग साहित्य जन जन तक पहुँचाया था। एक दिन चर्चा के दौरान पंडित लीलापत शर्मा जी ने उनसे पूछा कि युग साहित्य के प्रसार के लिए इतना उत्साह आप में कैसे पैदा हुआ। तो उन्होंने अपना संस्मरण बतलाया, बात सन 60 के दशक की है, तब पूज्य गुरुदेव मथुरा में ही थे। सस्ता समय था।
मैं गुरुदेव से मिलने मथुरा गया तो मैंने पूज्य गुरुदेव के लिए दो आने की एक अच्छी सी फूलमाला खरीदी, प्रणाम करके वह उन्हें पहना दी। फिर बातें होने लगी।
पूज्य गुरुदेव ने अचानक पूछा, बेटा यह माला तू कितने में लाया? मैंने बतलाया, दो आने में गुरुजी। इस पर गुरुजी बोले, बेटा तेरे दो आने खर्च हो गए और यह माला मेरे किसी काम नहीं आई। यदि तू दो आने की मेरी एक छो किताब ले जाता तो दसियों लोगों तक मेरे विचार पहुंचते, तेरे पैसे भी सार्थक होते, लोगों का भी भला होता और मुझे भी संतोष मिलता। श्री अस्थाना जी ने बतलाया कि पू गुरुदेव द्वारा सहजता से व्यक्त किए गए यह उद्गार मेरे हृदय में गहराई से बैठ गए।
मेरी समझ में आ गया कि अपने धन की सार्थकता, जन कल्याण और गुरु की प्रसन्नता तीनों अर्जित करने के लिए युग साहित्य का प्रसार सबसे सुगम और उपयोगी माध्यम है।
इसलिए मैंने ज्ञान यज्ञ को गति देने के लिए साहित्य विस्तार का ही लक्ष्य सामने रखा और गुरु कृपा से सफलता भी मिली।
केवल उजाड़ना नहीं बसाना भी आना चाहिए।
एक बार श्री संदीप कुमार जी और कुछ अन्य परिजन पटना में नवरात्रि अनुष्ठान कर रहे थे। जिस घर में वे अनुष्ठान कर रहे थे वहां भूत प्रेतों का निवास था। एक कार्यकर्ता श्री चंद्रशेखर जी के बेटे को भूत परेशान करने लगे। वे बेटे को लेकर शांतिकुंज आए व पूज्यवर को सब बात बताई। पूज्यवर ने बेटे से पूछा, भूत तुझसे क्या मांगते हैं? बेटे ने कहा, फूल मांगते हैं। गुरुजी ने एक फूल उठाकर दे दिया।
उनके जाने के बाद हम लोगों से कहा, तुम लोग यज्ञ करते हो जिससे भूतों का घर उजड़ जाता है।
जब तुम्हें उनका घर उजाड़ना आता है तो घर बसाना भी आना चाहिए न, अर्थात उनकी मुक्ति हेतु भी अनुष्ठान करें। फिर कहा, सभी भूतों को नई योनियां दे दी हैं। इस प्रकार हर समस्या का समाधान करना व साथ में शिक्षण देना भी उनका सहज स्वभाव था। गायत्री माता को मारेगा क्या? मिशन की लोकप्रियता व प्रतिष्ठा देखकर एक स्थान पर एक मंदिर के पुजारी ने गायत्री माता की मूर्ति भी मंगवा ली तथा गुरुदेव को उद्घाटन हेतु बुला लिया। गुरुवर सहज ही तैयार भी हो गए, पर जब मंदिर में गए तो देखा वहां पूर्व से ही राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी गणेश, शंकर भगवान, हनुमान जी की मूर्तियां विद्यमान हैं। उन्हें देखकर उन्होंने कहा, यहां इतनी मूर्तियां तो पहले से ही मौजूद हैं। गायत्री माता को मारेगा क्या? वहां उन्होंने गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की। संभवतः वह अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। उन्होंने समझ लिया कि यह श्रद्धालुओं को दुहने के लिए ही मूर्ति स्थापना कराना चाहता है। युग सर्जक भला अपने बच्चों को अनास्था के गर्त में कैसे ढकेलते, अतः मूर्ति स्थापना नहीं की। श्री अशोक दास एवं श्रीमती मणिदास। श्री अशोक दास जी 1981 में रोरकेला उड़ीसा में पूज्य गुरुदेव के संपर्क में आए, दीक्षा ली और 1984 में स्थायी रूप से परिवार सहित शांतिकुंज आ गए।
जो भी मशीन पकड़ेगा ठीक हो जाएगी।
मुझे माताजी का बहुत प्यार आशीर्वाद मिला।
उनके साथ बिताया एक एक क्षण मेरे लिए धरोहर है।
अभी मैं शांतिकुंज में नया नया ही आया था। पूज्य गुरुदेव उन दिनों सूक्ष्मीकरण साधना में थे।
एक दिन मैं और डॉक्टर दत्ता जब माताजी को प्रणाम करने गए तो माताजी ने बताया, लल्लू मेरा टेलीफोन इंटरकॉम खराब हो गया है, ठीक ही नहीं हो रहा।
डॉक्टर दत्ता जी बोले, माताजी यह ठीक कर देंगे। माताजी ने मुझसे पूछा, लल्लू तू ठीक कर देगा? अच्छा देख। तो मैंने मन में सोचा मैं कैसे करूंगा, पर मैं टेलीफोन को ब्रह्मवर्चस ले आया, उलट पलट कर देखा और खोलकर साफ कर दिया, वह ठीक हो गया। अगले दिन माताजी का फोन चालू हो गया। माताजी खूब खुश हुई और बोली, जा आज से तू गुरुजी का और मेरा फोटो सामने रखकर जो भी मशीन पकड़ेगा वो ठीक हो जाएगी। उनका वह आशीर्वाद खूब फला।
मैं किसी मशीन को उलट पलट कर देखता भर था कि वह ठीक हो जाती थी। उनके आशीर्वाद से मैंने कितनी मशीनें ठीक की इसका मेरे पास कोई हिसाब नहीं। मुझे ऐसा ही लगता रहा कि माताजी ने स्वयं ही इसे ठीक कर दिया है। मैं कोई राजेश खन्ना हूँ। प्रारंभ में EMD
विभाग बहुत छोटा सा था।
थोड़ा बहुत गीतों की रिकॉर्डिंग आदि का काम होता था।
साधन भी कम थे और टेक्निक भी आज के जितनी विकसित नहीं थी। एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्डर था जिससे बड़े भाइयों ने गुरुजी का एक प्रवचन रिकॉर्ड किया था।
बार बार दिखाने के कारण वह खराब हो गया था।
जब नया रिकॉर्डिंग सेट आया तो मैंने सोचा कि यदि गुरुजी उस प्रवचन को दोबारा बोल दे तो कितना अच्छा हो।
मैं गुरुजी के पास गया और निवेदन किया कि गुरुजी आपकी रिकॉर्डिंग करनी है।
गुरुजी ने मना कर दिया। मैं नीचे आ गया।
इस प्रकार मैं 2-3 बार खाली हाथ लौट कर आया।
मेरे बार बार आग्रह करने पर एक दिन गुरुजी ने डांट लगाई, बोले मैं कोई राजेश खन्ना हूँ,
देवानंद हूँ,
जो तू मेरी रिकॉर्डिंग करेगा। अब उनसे दोबारा निवेदन करने का मेरा साहस नहीं था। फिर भी बार बार मन में विचार आता कि गुरुजी की रिकॉर्डिंग तो अवश्य होनी चाहिए ताकि सबको और आने वाली पीढ़ियों को भी इस अमृत का पान कराया जा सके।
सो एक दिन मैंने माताजी से कहा, माताजी गुरुजी तो रिकॉर्डिंग के लिए मना करते हैं। माताजी बोली, ठीक है बेटा, वे मानेंगे तो नहीं पर मैं कोशिश करूंगी। अगले दिन जब मैं गया तो माताजी ने कहा, जा लल्लू गुरुजी से मैंने कह दिया है। मैं ऊपर गया तो गुरुजी ने मेरा कैमरा आदि देखकर मुझे तीखी निगाहों से देखा, पर मैंने उनकी ओर नहीं देखा कि फिर डांटेंगे और चुपचाप रिकॉर्डिंग में लग गया।
गुरुजी कैमरे की ओर एकटक देखते रहे और कुछ कुछ बोलते रहे। मैं चुपचाप रिकॉर्डिंग करता रहा। लगभग आधा घंटा रिकॉर्डिंग की।
जब नीचे आया और वंदनीय माताजी को दिखाने लगा तो देखा कि उसमें तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था।
मुझे बहुत अफसोस हुआ। माताजी मुस्कुराई और बोली, लड्डू लेकर जा।
जब तक गुरुजी की इच्छा नहीं थी तब तक हम लोग उनकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सके।
जड़ और चेतन सभी उनकी इच्छानुसार काम करते थे।
तू मुझे और गुरुजी को कभी अलग मत करना।
वंदनीय माताजी के लगभग 150 गीत रिकॉर्ड हुए हैं।
माताजी संगीत वाले भाइयों को और रिकॉर्डिंग टीम को ऊपर अपने हॉल में ही बुलाती थी।
वे स्वयं गीत चुनती या लिखवाती थी। माताजी अपने विचार बताती और आज 0 प्रणव भाई साहब, उपाध्याय जी आदि गीत लिखते। उन्हें जहां जैसा शब्द चाहिए होता वे संशोधन करवाती और फिर गाती थी। गाते गाते वे एकदम भावविह्वल हो जाती थी।
अक्सर रिकॉर्डिंग के समय कोई शब्द जीवंत हो उठता और वे भावावेश में चली जाती।
फिर उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रहती थी।
स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की समाधि अवस्था के विषय में पढ़ा सुना था, पर वह कैसी होती है यह माताजी को देखकर ही समझ पाए।
उस दिन फिर रिकॉर्डिंग का काम आगे नहीं बढ़ता था। जीजी कहती, भाई साहब अब तो कल ही होगा और हम लोग लौट आते। उन दिनों कैसेट का प्रचलन खूब जोर शोर से था।
गीतों के व परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों के कैसेट तैयार किए जा रहे थे।
कैसेट के इनले कार्ड में परम पूज्य गुरुदेव का चित्र देने का निर्णय हुआ। जब माताजी को एक नमूना दिखाया गया तो माताजी ने कैसेट को उलट पलट कर देखा और बोली, बेटा मुझे और गुरुजी को कभी अलग मत करना। फिर बोली, बेटा आने वाले समय में दुनिया अपनी समस्याओं का समाधान मेरे गीतों में और गुरुजी के प्रवचनों में ढूंढेगी। मैंने उसे शिरोधार्य किया।
सच तो है, शिव और शक्ति को भला अलग किया भी कैसे जा सकता है।
तेरा डिब्बा नहीं चल रहा।
अंतिम दिनों में माताजी बीमार रहने लगी थी। निर्णय लिया गया कि माताजी को गर्मी के कारण बहुत परेशानी होती है, अतः उनके कमरे में AC
लगाया जाए।
माताजी के मना करने पर भी उनके कमरे में AC लगा दिया गया, पर वह हर दूसरे दिन खराब हो जाता था।
मैं उसे चेक करता व चला कर जाता, पर अगले दिन फिर वही शिकायत मिलती। AC
को ठीक करने के लिए अक्सर मुझे बुलाया जाता। मैं देखता, बाकी सब AC तो ठीक चल रहे हैं,
बस माताजी का ही नहीं चल रहा। एक दिन माताजी मुस्कुराकर बोली, लल्लू तेरा डिब्बा नहीं चल रहा। मैंने नीचे का सिस्टम ऊपर फिट कर दिया, पर ऊपर जाकर वह भी नहीं चला। मैं बहुत दिनों तक इसका रहस्य खोजता रहा। बहुत दिनों बाद एक दिन समाधान मिला कि यह तो उनकी माया थी। वह तो ब्राह्मणोचित जीवन जीने हेतु संकल्पबद्ध थी।
अतः बच्चों की भावना भी रख ली और अपना संकल्प भी निभाया।
गुरुजी माताजी गुणों के भी पारखी थे।
मणि दीदी बताती हैं कि वे किसी के गुण को देखते तो उसकी प्रशंसा करते और अन्यों को भी उस गुण को धारण करने के लिए प्रेरित करते।
उनकी निगाहें बड़ी पैनी थी। एक बार गुरुजी किसी काम से नीचे आए थे। उन्हें प्यास लगी तो यादव अम्माजी ने पानी पिलाया। गुरुजी गिलास देखकर बोले, वाह,
गिलास तो खूब चमक रहा है। और पानी पीते पीते ही उन्होंने उनके कमरे का निरीक्षण कर लिया।
फिर एक दिन गोष्ठी में बोले, बेटा, स्वच्छता देखनी हो तो यादव अम्मा के घर जाकर देखो। विनम्रता सीखनी हो तो रैना की बहू पत्नी से सीखो। कपड़ों की धुलाई सीखनी हो तो शारदा अम्मा से सीखो। इस प्रकार वे सबके गुणों की प्रशंसा करते हुए गुण ग्राहकता सिखाते थे। माताजी एक बार श्री चौहान जी की प्रशंसा करते हुए बोली, बेटा, एक शबरी थी जो मातंग ऋषि के आश्रम में सबके जगने से पहले ही रास्ता बुहार देती थी, और बेटा हमारे यहाँ, यह हमारे चौहान जी हैं। सब जानते हैं कि श्री चौहान जी का आजीवन यह नियम रहा। वे रात में 2-2:30 बजे ही उठकर शांतिकुंज क्षेत्र में प्रतिदिन झाड़ू लगाते थे।
अब तुम लोग भी भोजन कर लो। एक दिन चौके की एक बहन से चावल धोते समय हाथ से बाल्टी फिसल गई और बहुत सारा चावल, लगभग बाल्टी भर चावल नाली में बह गया।
माताजी को पता चला तो उन्होंने देखा और सारा चावल इकट्ठा करके भर कर लाने को कहा। फिर बोली, अब इसे अच्छी तरह से धुलो फिर पकाओ।
आज चौके की सब बहनें इसे ही खाएंगी। माताजी का आदेश भला कौन टाल सकता था। उस चावल को अच्छे से धोया गया और पकाया गया। बहनें सोच रही थीं कि आज नाली का चावल खाना पड़ेगा। माताजी ने देखा चावल पक गया है।
बोली, छोरियो, एक थाली में थोड़ा भात परोस कर लाओ। तो माताजी को वह भात परोस कर दिया गया तो वे बड़े चाव से उसे खाने लगी और बोली, बेटा, अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए।
इसे खाने से कोई बीमार नहीं पड़ेगा।
अब तुम लोग भी भोजन कर लो। किसी के मन में कोई गलत भावना ना आए, इसलिए माताजी ने पहले स्वयं उस भात को खाया, फिर सबको खिलाया।
ऐसे ही सन 1978 में जब बाढ़ आई थी, तब ब्रह्मवर्चस में पानी भर गया था।
उस समय अधिकांश परिवार ब्रह्मवर्चस में ही रहते थे। दाल चावल के कुछ बोरे आधे आधे भीग गए। जब माताजी तक सब जानकारी पहुंची तो माताजी ने कहा, बेटा,
सबको कह दो कि कुछ दिन तक अपने अपने घर में कोई खाना नहीं बनाएगा,
सब खिचड़ी ही खाएंगे, घी मैं यहाँ से भेज देती हूँ। माताजी सबके मन की बात जान जाती थी।
एक दिन दोपहर में माताजी आराम कर रही थी। एक बहन के मन में आया, माताजी मोटी हैं। इतने में माताजी बोली, तू सोचती है माताजी मोटी हैं, कुछ काम नहीं कर पाएंगी। बेटा, मैं अभी भी 100 लोगों का खाना बना सकती हूँ। वह बहन बेचारी हैरान रह गई कि मेरे मन में विचार बाद में आया और माताजी ने जवाब उसके पहले ही दे दिया। पहले सुबह शाम की चाय प्रज्ञा माताजी के चौके में ही मिलती थी। जब भीड़ बढ़ने लगी तब परिजनों की आवश्यकता को समझते हुए छोटी सी कैंटीन बना दी गई।
उसमें चाय के साथ पकौड़ी व जलेबी आदि भी बन जाती थी।
माताजी को पता चला कि लोग बाग अनुष्ठान में भी भोजनालय से प्रसाद ग्रहण न कर कैंटीन में ही डटे रहते हैं।
तब माताजी ने कहा था, बेटा, यह प्रसाद है।
सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर प्रसाद से बनता है।
इसे जिस भाव से खाओगे वही मिलेगा। गुरुजी माताजी का दाम्पत्य जीवन एक आदर्श दाम्पत्य जीवन था।
हर एक के लिए प्रेरणा देता हुआ कि परस्पर एक दूसरे का सहयोग ही जीवन के बड़े उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है। इसी में जीवन का असली आनंद है। परिजन तो बताते ही हैं, पर माताजी भी गोष्ठियों में बताया करती थीं कि मथुरा में प्रारंभ के दिनों में जब माताजी सबको भोजन आदि कराकर बर्तन साफ करने बैठती तो गुरुजी भी उनकी मदद करने लगते।
तब माताजी उन्हें कहती, आचार्य जी, आप रहने दीजिए। इस पर गुरुजी कहते, माताजी, हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे कि पत्नी का सहयोग कैसे करना चाहिए। गुरुजी कभी कभी गोष्ठी में कहते, बेटा, दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए, इसे हमारे जीवन से सीखना।
माताजी की आंख का ऑपरेशन हुआ था। मैं माताजी से मिलने गई।
उस समय लगभग 11 बज रहे थे। गुरुजी उन दिनों सूक्ष्मीकरण साधना में थे। गुरुजी भी माताजी को देखने आए थे।
मुझे पता नहीं था कि गुरुजी माताजी के पास बैठे हैं।
दरवाजा हल्का सा खुला था।
मैं जैसे ही भीतर जाने लगी देखा गुरुजी माताजी के पास बैठे हैं।
मैं पीछे हट गई। गुरुजी के दर्शनों का लोभ करके मैं बाहर ही खड़ी रही, लौटी नहीं।
मैंने देखा वे माताजी का हाथ थाम कर बैठे हैं। लगभग एक घंटा गुरुजी माताजी का हाथ थाम कर बैठे रहे, पर दोनों में बातचीत कुछ भी नहीं हुई। माताजी अक्सर गुरुजी को याद कर प्रवचन में बताया करती थीं, बेटा दिन भर काम करके थक कर जब मैं ऊपर जाती तो गुरुजी पानी का गिलास भर कर रखते और सीढ़ियों के मध्य तक आते थे,
मेरा हाथ थाम कर ऊपर ले जाते और बिठाते, फिर अपने हाथ से पानी का गिलास उठा कर देते। यह बताते हुए वे अक्सर रो पड़ती थी।
सूक्ष्मीकरण साधना में जब वे गए तो मिशन के सब कार्यों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर सौंप दी।
मैंने कहा, आचार्य जी यह सब मैं कैसे कर पाऊंगी? तो बोले, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, जब कभी मथुरा आदि जाना पड़ता तो वे ऊपर से खिड़की में से देखते रहते थे।
कभी कभी मथुरा के दिनों की याद कर बताती, बेटा इस गायत्री परिवार को हमने और आचार्य जी ने अपने खून पसीने से सींचकर खड़ा किया है।
मथुरा में बंदर खूब परेशान करते थे, मैं खाना बनाती,
गुरुजी परोसने में मदद करते, हाथ में लाठी भी रखते और बंदरों को धकेलते रहते।
मथुरा में घर छोटा ही था, लैट्रिन बाथरूम भी कम थे।
कभी कभी कोई कोई बहन अपने छोटे बच्चों को छत पर ही टट्टी पेशाब करा देती।
अक्सर हमें धुलाई करनी पड़ती थी, गुरुजी पानी डालते थे और मैं झाड़ू लगाती थी। कभी कभी मैं पानी डालती और गुरुजी झाड़ू लगाते थे।
झाड़ू की रगड़ से हाथों में छाले पड़ जाते और कभी कभी खून भी आ जाता। बेटा इस मेहनत और प्यार से हमने परिवार को जोड़ा है।
मैं जल्दी जल्दी घर का सब काम निपटा कर गुरुजी के काम में मदद करने तपोभूमि पहुंच जाती थी।
गुरुजी को पत्र व्यवहार में भी मदद करती थी।
मैं पत्र पढ़ती जाती और गुरुजी जवाब लिखते जाते। एक बार हम सब कार्यकर्ताओं की गोष्ठी थी।
गुरुजी ने कहा, बेटा तुम सब लोग परस्पर प्रणाम करते हो कि नहीं?
रोज सुबह अपने पति के चरण स्पर्श किया करो। फिर भाइयों की ओर उन्मुख होकर बोले, तुम लोग भी पत्नी को प्रणाम किया करो। परस्पर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तुमको देखकर बच्चे स्वयं ही सीख जाएंगे।
जयपुर के श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी भी बताते हैं कि एक दिन जब मैं गुरुजी के पास बैठा था, गुरुजी ने किसी काम से अलमारी खोली। मैंने देखा उनकी अलमारी में माताजी की तस्वीर रखी है।
मैं कुछ पूछता इससे पहले ही गुरुजी बोले, बेटा मैं माताजी को रोज प्रणाम करता हूँ।
अपने सब कार्यों के लिए मैं माताजी से ही शक्ति लेता हूँ।
गुरुजी महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील थे।
समाज में फैली कुप्रथाओं और संकीर्ण सोच आदि के कारण महिलाओं की दासता जैसी स्थिति का ध्यान करने मात्र से उन्हें असहनीय वेदना होती थी।
उनकी दयनीय स्थिति पर वे बहुत आहत होते थे।
हम लोग जिनने उनका सान्निध्य पाया है, देखा है,
जब कभी वे महिला उत्पीड़न संबंधी कोई समाचार पढ़ लेते थे तब तो आकुल व्याकुल हो जाते थे।
उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे।
कहते थे, कब मातृ शक्ति का उद्धार होगा। उनके साहित्य में भी उनकी यह पीड़ा देखने को मिलती है। गोष्ठियों में अक्सर भाइयों को डांट पिलाते थे, तू गर्मा गर्म रोटी खाएगा और छोरी तेरे लिए बैठी रहेगी। बेटा ये गर्म रोटी मांगे तो मुझे बताना। बहनों को भी उन्होंने खूब आगे बढ़ाया। सामान्य बातचीत में भी वे बहनों को खूब प्रोत्साहन देते रहते थे। ऐसे ही एक दिन शायद वे कुछ परेशान थे, कोई खबर पढ़ ली होगी। उस दिन कार्यकर्ताओं की गोष्ठी में भाइयों को डांटते हुए बोले, अच्छा
गरम रोटी खाना है,
गरम रोटी खाना है। फिर बहनों की ओर उन्मुख होकर बोले, कहना अभी देती हूँ, फिर पहले खुद खा लेना, अच्छे से चबाना। गुरुजी ने लगभग 5 मिनट चबाने की नकल की और फिर बोले, और मुंह में डाल देना।
कहना तुम चबाना भी मत, इतना कष्ट भी क्यों करते हो?
उन दिनों कानपुर का वह दिल दहला देने वाला समाचार सुर्खियों में था, जब एक ही परिवार की 3 लड़कियों ने दहेज की ऊंची मांगों से आहत होकर आत्महत्या कर ली थी। तब गुरुजी ने कहा था, यदि सब लड़कियां दहेज लेकर शादी करने से इनकार कर दें, तो यह दहेज का दानव वर्ष भर में खत्म हो जाएगा। पंडित लीलापत शर्मा जी ने भी एक बार ऐसा ही एक संस्मरण सुनाया था कि गुरुजी को बहनों का कष्ट बिल्कुल सहन नहीं होता था। वे कहते थे, जब तक मातृशक्ति रोती रहेगी समाज का उद्धार संभव नहीं है। उन्होंने बताया, एक बार हम और गुरुदेव असम की यात्रा पर थे। ट्रेन में एक महिला बहुत बड़ा घूंघट ओढ़े बैठी थी। वह बहुत दुखियारी जान पड़ रही थी, क्योंकि वह लगातार रोए जा रही थी। गुरुजी की दृष्टि से वह भला कैसे ओझल रहती। एक स्टेशन पर जब उसके साथ के परिजन नीचे उतरे तो गुरुजी ने उसे पानी पिलाया और चना मुर्रा खाने को दिया।
उसका कष्ट पूछा पर वह अपने मुख से कुछ बता नहीं पाए।
गुरुजी तो अंतर्यामी थे, उसे सांत्वना दी, बोले, रो मत बेटी, तेरा कष्ट दूर होगा। साथ ही कहा, यह घूंघट खोल दे। उस महिला ने बस इतना ही कहा, यह सब मुझे मार डालेंगे। तब गुरुजी ने कहा, मैं उन्हें समझाता हूँ। महिला के परिजन जब ट्रेन पर चढ़े तो गुरुजी ने उन्हें समझाया, मनुष्य मनुष्य के बीच क्या पर्दा।
पर्दा तो आंखों का होता है,
शिष्ट व्यक्ति शालीन वैसे भी रहता है, अन्यथा घूंघट से शर्म ढकी नहीं रह सकती, आदि आदि। गुरुजी की बात का उन लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने वहीं पर उसका घूंघट खुलवा दिया। इस प्रकार गुरुजी रास्ते में भी जनकल्याण करते चलते थे। एक दिन माताजी से एक लड़की माधवी ने प्रश्न किया, माताजी विधवा औरतों को बिंदी आदि नहीं लगाना चाहिए। उसके इस प्रश्न पर माताजी बोली, बेटा यह गलत धारणा है,
सुहाग कभी मरता नहीं है, इसलिए बिंदी लगाना नहीं छोड़ना चाहिए। 1986 में हरिद्वार का कुंभ। 1986 में हरिद्वार में कुंभ लगने वाला था।
एक दिन गुरुजी ने ब्रह्मवर्चस की पूरी टीम को बुलाया और बोले, देखो
कुंभ लगने वाला है,
इस समय हिमालय की बड़ी बड़ी हस्तियां भी आएंगी,
ऋषि मनीषी तपस्वी सब किसी के भी रूप में आ सकते हैं। तुम लोग ऐसा करना कि जितने भी लड़के हो सब हर आने वाले के जूते साफ करना,
रगड़ रगड़ कर ठीक से साफ करना, अच्छे से चमकाना, बिल्कुल धूल न रहे। फिर बहनों की ओर मुखातिब होकर बोले, लड़कियों
तुम सब लोग डॉक्टरों वाला कोट पहन लेना और गले में स्टेथोस्कोप टांग लेना।
जो भी आए उसको पूरा ब्रह्मवर्चस दिखाना और बढ़िया से सब बताना, अच्छे से समझाना। बहनों ने गुरुजी से कहा, गुरुजी हम यह सब कैसे करेंगे? गुरुजी बोले, बेटा सब हो जाएगा,
हम सब गुरुजी के कहे अनुसार सुबह से ही तैयार हो जाते।
भाई लोग बहनों को खूब चिढ़ाते भी रहते, देखो देखो डॉक्टर लोग आ गए। एक दिन 10-12 लोगों की टीम आई। डॉक्टर दत्ता भाई साहब ने मुझे बुलाया और कहा, मणि जी आप इन्हें गाइड करना। मैं उनसे बोली, भाई साहब मुझे कुछ नहीं आता है, आप प्लीज मुझे माफ करिए,
मुझे हिंदी भी ठीक से बोलनी नहीं आती है,
मैं नहीं कर पाऊंगी, आप ही कर दीजिए। दत्ता जी बोले, आपको गुरुजी पर भरोसा नहीं है क्या? और मुस्कुराते हुए बोले, हम तो भाई अपना काम करेंगे, जूता साफ करेंगे। मैं बोली, गुरुजी पर तो भरोसा है। वे बोले, बस फिर आप ही गाइड करेंगी। जैसे ही वो लोग आए मैंने उन्हें एक घंटा गाइड किया, पूरा ब्रह्मवर्चस दिखाया।
मैंने उन्हें क्या क्या बताया मुझे खुद नहीं पता। अंत में उन्होंने मुझसे पूछा, आपने कहाँ से मेडिकल किया है,
आप अपना परिचय दीजिए। मैं थोड़ा घबराई कि अब क्या बोलूं।
मैंने अपना थोड़ा बहुत परिचय दिया और फिर उनसे पूछा, आप सब कहाँ से आए हैं? उन्होंने बताया, हम सब लखनऊ के मेडिकल कॉलेज से आए हैं, यह हमारी पूरी डॉक्टरों की टीम है। अब तो मैं घबरा गई, मुझे कुछ सूझा नहीं।
मैंने एक मुहावरा सुना था, सिर पर पैर रख कर भागना, पर उसका अनुभव मुझे उस दिन हुआ।
मैंने उनसे कहा, मुझे कुछ काम है, आगे की बात आपको डॉक्टर दत्ता बताएंगे, और मैं वहां से भाग ली। आज भी मैं जब उस घटना को याद करती हूँ तो गुरुजी के शब्द याद आते हैं, बेटा तुम बस वह करो जो मैं कहता हूँ।
मैं जिस चेतना का अवतरण करना चाहता हूँ वह मैं करा दूंगा। श्री ब्रजमोहन गौड़।
श्री ब्रजमोहन गौड़ जी 1969 में ग्वालियर में पूज्य गुरुदेव के संपर्क में आए, तत्पश्चात समयदान करते रहे, टोलियों में भी जाते रहे।
1981 में पूज्य गुरुदेव के कहने पर स्थायी रूप से परिवार सहित शांतिकुंज आ गए।
उनसे क्या जुड़ा, धन्य हो गया।
ग्वालियर में शिवरात्रि पर्व 1969 में पूज्य गुरुदेव के द्वारा गायत्री मंदिर में गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा हुई।
मैं यह सुनकर वहां गया था कि एक संत आ रहे हैं। मैं गुरु की खोज में था। मैंने पूछा कि आचार्य जी कहाँ हैं? एक परिजन ने बताया कि कमरे में हैं।
उनके पास 2-3 महिलाएं बैठी थी।
उनमें से एक महिला ने पूछा कि गुरुजी,
कल्याण में शंकराचार्य ने लिखा है कि महिलाओं को गायत्री नहीं जपनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा, बेटी शंकराचार्य ने वेद नहीं लिखे हैं।
मैंने वेदों का भाष्य किया है,
महिलाओं को गायत्री जप करना चाहिए। मैं सुनकर कमरे से बाहर आया। थोड़ी देर बाद एक आवाज सुनाई पड़ी, जिन्हें पूज्य गुरुदेव से दीक्षा लेनी हो वे यज्ञशाला में आ जाएं।
मैं बहुत वर्षों से गुरु की खोज में था, अनेक साधु संतों के संपर्क में आया, पर अंतःकरण ने कभी किसी को गुरु मानने की स्वीकृति प्रदान नहीं की।
उस दिन हृदय मचल उठा, अनुभूति हुई कि गुरु दीक्षा इसी क्षण ले लेनी चाहिए।
मैं यज्ञशाला में जाकर बैठ गया और पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ले ली।
अब पूज्य गुरुदेव का सूक्ष्म शक्ति प्रवाह उपासना के द्वारा प्रेरणा देता रहा।
धीरे धीरे तन मन सब पूज्यवर के विचारों में रंगता गया,
घर बैठे बैठे ही परिव्राजक बन गया। 1974 में शांतिकुंज पहुंचा, तब पूज्य गुरुदेव से साक्षात्कार हुआ। उन्होंने पूछा, क्या काम करते हो? मैंने कहा, नौकरी। कितने पैसे मिलते हैं? मैंने कहा, 250 रुपये। उन्होंने कहा, तुम्हारा वेतन दुगुना करा देते हैं। मैंने कहा, रुपये नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापार करा देते हैं। मैंने कहा, वह मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, जमीन जायदाद दिलवा देते हैं। मैंने कहा, नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, सोना चांदी दिलवा देते हैं। मैंने कहा, हमें नहीं चाहिए। पूज्य गुरुदेव नाराज होकर बोले, हमें नहीं जानते।
हमने मूंगफली बेचने वालों को लखपति बना दिया है। हम हिमालय से आए हैं। अभी हमने अपनी तपस्या का 4 आने खर्च किया है, 12 आने अभी हमारी मुट्ठी में है। फिर वे बोले, तुम कुछ मांगते क्यों नहीं? मैंने कहा, कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, तुम्हें संसार में कुछ नहीं चाहिए? मैंने कहा, कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, फिर तुम्हें ब्राह्मण फकीर बना दें। मैं चुप रहा। उन्होंने कहा, बेटा, फकीर बनने से डर लगता है। मैं चुप रहा। उन्होंने कहा, फकीर बनने से आदमी डरता है, सोचता है रोटी कहाँ से मिलेगी।
पर बेटा, भगवान अपने कुत्ते को भी रोटी खिला देता है और भक्त को तो स्वयं हाथों से खिलाकर खाता है। मैंने कहा, बना दीजिए। प्रतिवर्ष शांतिकुंज आने जाने का क्रम चलता रहा। जब विदाई होती तब तिलक लगाते समय कहते, जा रहा है, जाना आना बंद कर। जा रहा है तो यहाँ आना मत, आए तो कभी यहाँ से जाना मत। एक बार 1980 दिसंबर में कांवट, जयपुर, राजस्थान में श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी के यहाँ पूज्य गुरुदेव शक्तिपीठ का उद्घाटन करने पहुँचे। मैं और अग्रवाल जी प्रातःकाल उनके दर्शन करने गए। प्रणाम करने के बाद गुरुदेव ने कहा, अब तूने यदि नौकरी नहीं छोड़ी तो 1000 वर्ष तक मेरा शाप तुझे खाएगा, और नौकरी छोड़ देगा तो 1000 वर्ष तक मेरा आशीर्वाद तुझे फलेगा। तू नहीं देखता बेटा, हमने तूफान चला दिया है। मैं मार्च 1981 में शांतिकुंज आया। गुरुदेव बोले, नौकरी छोड़ दी? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, बेटा, यहीं से अपना इस्तीफा भेज दो। मैंने नौकरी छोड़ दी।
परिवार में परिजनों का बहुत विरोध था,
मित्र परिजन भी बहुत विरोध में थे, पर अंतरात्मा ने कहा, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा मानने में ही कल्याण है। मैं गुरुदेव माताजी की छत्रछाया में रहने लगा। कुम्हार जैसे बर्तन तैयार करता है, वैसे ही पूज्य गुरुदेव का स्नेह, प्यार और डांट मिलने लगी।
धीरे धीरे मिशन के कार्यों को करने की जिम्मेदारी बढ़ती गई।
शांतिकुंज में ब्राह्मण जीवन जीने का प्रशिक्षण और अभ्यास होने लगा। मन में तृप्ति, तुष्टि, शांति आने लगी।
जीवन की सार्थकता समझ में आने लगी। इतने से कम में हमारा गुरु हमें नहीं मिला।
वसंत पर्व 1990 में प्रातः पूज्य गुरुदेव के पास गोष्ठी चल रही थी। गोष्ठी के बाद उन्होंने मुझे रोक लिया।
गुरुदेव कहने लगे, तूने मुझे बहुत धोखा दिया है। मैंने कहा, समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा, तू सबसे कहता है कि मैंने गुरुदेव के लिए नौकरी छोड़ दी, पर तेरे दिमाग में तेरे बीबी बच्चे बैठे रहते हैं, तू हमारा नहीं है। मैं चुप हो गया।
उन्होंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से मेरे अंतस में झांक लिया था।
मैं दहकी हुआ और धर्मपत्नी से चर्चा करते हुए कहा कि यह जीवन तो बेकार हो गया, क्योंकि आज गुरुजी ने कहा कि हमारे दिमाग में बच्चों की चिंता रहती है।
फिर दोपहर में मैं अपनी पत्नी के साथ गुरुदेव के पास पहुंचा।
उन्होंने पूछा, क्या बात है? मैंने कहा कि मेरे दिमाग में अब बीवी बच्चे नहीं हैं। उन्होंने कहा, इस छोरी के दिमाग में तो होगी। यह सुनकर मेरी पत्नी रोने लगी और कहा, पिताजी, मेरे दिमाग से भी बच्चों की चिंता समाप्त हो गई। पूज्य गुरुदेव ने कहा, झूठ बोलती है। मेरी पत्नी ने कहा, नहीं पिताजी, मैं सच बोलती हूँ। तब पूज्य गुरुदेव बोले, आज से हम तुम्हारे हुए, इतने से कम में हमारा गुरु हमें नहीं मिला तो हम तुम्हें कैसे मिल जाते? मैंने कहा, गुरुदेव, एक प्रार्थना है, बच्चे पढ़े या न पढ़े, शादी हो या न हो, पर ये शांतिकुंज में मिशन का कार्य करें। गुरुदेव ने डांट करके कहा, तूने फिर बच्चों की बात की? मैंने हाथ जोड़कर कहा, गलती हो गई। गुरुदेव बोले, हमारी मर्जी, हम शादी करें या न करें, मैनेजर बनवाएं या झाड़ू लगवाएं, तू कौन होता है? ऐसे थे गुरुदेव, जिनसे जुड़कर यह जीवन धन्य हो गया। आज हम अनुभव करते हैं कि वे साक्षात गुरुरूप में ईश्वर बनकर आए। पूज्य गुरुदेव अव्यक्त इतने थे कि कोई जान नहीं पाया और महान इतने कि कोई समझ नहीं पाया।
पूज्य गुरुदेव अपना काम स्वयं ही करना पसंद करते थे।
उन्हें किसी से भी अनावश्यक सेवा लेना पसंद नहीं था। इस प्रकार अपने विराट परिवार को उन्होंने यह संदेश दिया कि जितना आवश्यक हो उतनी ही सेवाएं दूसरों से लो, बाकी काम स्वयं करो।
एक बार मैं गुरुजी के पास बैठा था। गुरुजी दाढ़ी बना रहे थे।
जब वे दाढ़ी बना चुके तो ब्रश, पानी की कटोरी आदि उठाने के लिए मैं आगे बढ़ा। इस पर उन्होंने मुझे डांट दिया। कहा, तुझे क्या मालूम ब्रश कहाँ रखना है, पानी कहाँ फेंकना है?
तुझे क्या मालूम,
तू बैठ। इस प्रकार वे अपना काम स्वयं ही करते थे, किसी की सेवा लेने के लिए तैयार नहीं रहते थे।
ऐसे ही छत्तीसगढ़ के बिसाहू राम साहू अक्सर उनके बाल बनाया करते थे।
वह जब कभी बाल बनाने के बाद दाढ़ी बनाने के लिए कहते तो गुरुजी कहते, मैं खुद बनाऊंगा। कभी कभी वह जिद पकड़ लेते, मैं बना देता हूँ गुरुजी। तब वे झल्ला जाते और कहते, तू मेरी दाढ़ी क्यों बनाएगा, क्या मैं नहीं बना सकता? तू मेरा सब काम करेगा, सब काम करेगा, जा।
मेरा सब काम तू ही करा। अब तो बेचारे चुप हो जाते और चुपचाप चले जाते।
धीरे धीरे उन्हें मालूम हो गया था कि गुरुजी अपना वही काम दूसरों से कराते हैं जो वे खुद नहीं कर सकते। बाकी अपने सब कार्य वे स्वयं ही करते हैं।
एक दिन शाम के लगभग 4 o'clock बजे थे, मैं उनके पास बैठा था। एक व्यक्ति उनके पास आया। उसने धोती कुर्ता पहना था, कंधे पर साफा रखा था। गुरुजी ने पूछा, कहाँ से आए? वह बोला, हाथरस से आया हूँ। उसके पास एक छोटी सी थैली थी जिसमें कुछ चीज रखी थी।
उसने वह थैली उन्हें दी और चला गया।
गुरुजी ने थैली खोली, उसमें एक आम रखा था। गुरुजी बोले, वो एक ही आम दे गया, दो होते तो एक तू खाता, एक मैं। फिर वो उठे, अलमारी में से चाकू निकाला,
आम को काटा और गुठली प्लेट में रखकर मुझे दे दी।
फिर बोले, तू बहुत फायदे में रहा।
आम के आम, गुठली के दाम, कल्पना से बाहर की बात है।
इतने बड़े सिद्ध पुरुष, स्वयं ने प्लेट निकाली, चाकू निकाला और स्वयं ही काट कर दिया।
चाहते तो आदेश भी दे सकते थे।
गायत्री माता के स्टेनो। एक दिन चर्चा के दौरान श्री राम खिलावन अग्रवाल जी ने मुझे बताया कि दिसंबर 1977 में वे कुछ कार्यकर्ता गुरुजी के पास छत पर लेखन कर रहे थे। उन दिनों पूज्यवर पूरी टीम को अपने पास बैठाकर लेखन सिखाते थे। उस समय उनसे मिलने का समय निर्धारित नहीं था, कोई भी कभी भी मिलने चला आता था। एक 5 विषय के एमए डिग्रीधारी व्यक्ति आए और गुरुजी से बोले, गुरुदेव, मुझे अपना स्टेनो बना लें, आप जो भी बोलेंगे मैं लिख लूंगा और आपका काम आसान बना दूंगा। गुरुजी बोले, बेटा, तुम तो 5 विषय में एमए हो, मेरे पास तो 6-7 विषय के एमए भी आए थे। वे कुछ क्षण चुप रहे, फिर कहा, मैं क्या करूंगा स्टेनो रखकर?
मेरी एक मुसीबत है और वो ये है कि मैं भी किसी का स्टेनो हूँ।
अब स्टेनो कैसे रखे? वे गायत्री माता जो कहती हैं वही मैं लिखता हूँ। वह व्यक्ति गुरुजी की सहजता पर दंग होकर चला गया।
हम सबने एक दूसरे की ओर देखा,
शायद सभी उनके शब्दों का अर्थ ढूंढ रहे थे।
उनके हर आचरण में कुछ न कुछ शिक्षण छिपा रहता था।
महापुरुष कितने विनम्र होते हैं, यह उनके व्यवहार से झलकता था। भारत माता मंदिर का उद्घाटन समारोह था। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी द्वारा उद्घाटन हुआ। स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने पूज्यवर से भी इस संदर्भ में सलाह मशविरा किया था। निमंत्रण शांतिकुंज भी आया था। 3 दिन का कार्यक्रम था। गुरुदेव ने 3rd दिन मुझे बुलाया और कहा, भारत माता मंदिर चलना है। मैंने कहा, गाड़ी ले आऊं? उत्तर मिला, पैदल चलेंगे।
संतों के दर्शन पैदल चलकर ही करना चाहिए।
हम दोनों पैदल भारत माता मंदिर के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे।
बड़ी सहजता से उन्होंने मंच पर विराजमान संतों को प्रणाम किया और पंडाल में अंतिम पंक्ति की कुर्सी पर विनम्रतापूर्वक बैठ गए।
स्वामी सत्यमित्रानंद जी के स्वयंसेवक सभी ओर फैले थे। चूंकि शांतिकुंज बहुत पास है, अतः बहुत से स्वयंसेवक गुरुदेव को पहचानते थे।
उन्होंने मंच पर जाकर गुरुदेव के आने की सूचना दी।
गायत्री वाले आ गए हैं, सबसे पीछे की अंतिम कुर्सी पर बैठे हैं। सुनकर सत्यमित्रानंद जी गदगद हो गए। उस समय उनका ही प्रवचन चल रहा था।
उसे बीच में ही रोककर उन्होंने कहा, महापुरुष जब भी आते हैं उनमें कभी कोई बनावट नहीं होती।
ऐसी सहजता सरलता कहीं देखने को नहीं मिलती। ऐसा ही एक महापुरुष हमारे आयोजन में हमारे सौभाग्य से उपस्थित है,
जो हमारे लिए ऐतिहासिक बात है। मैं आचार्य जी से कर बद्ध प्रार्थना करता हूँ कि वे हमारे मंच की शोभा बढ़ाएं और अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। पूज्यवर उसी सहजता से उठकर मंच की ओर चल दिए। साथ में मैं भी था।
स्वामी जी ने आचार्य जी को बैच लगाया व आशीर्वचन हेतु पुनः निवेदन किया। पूज्यवर हर वस्तु में निर्माण की कल्पना करते थे, अतः इसे भी उसी दृष्टि से लेते हुए उन्होंने कहा, देवियों सप्तस्रोवर क्षेत्र में अभी तक कोई दर्शनीय स्थल नहीं था। स्वामी जी ने भव्य मंदिर बनाकर यह कार्य पूर्ण किया। यह हिमालय का क्षेत्र है, इसमें केवल बड़े बड़े जंगल ही थे। अब यह विशाल मंदिर इंसान को देवता बनाने के कार्य में लगकर अपनी सार्थकता सिद्ध करेगा। संत, सुधारक, शहीद की पीढ़ियां प्रदान करेगा। बड़ी सहजता से भविष्य का निर्देशन भी दे दिया। ऐसी थी उनकी सहजता सरलता। गुरुजी की सादगी के विषय में चांदवानी जी बताते हैं कि सन 1968 में जब पूज्यवर शांतिकुंज हेतु भूमि लेने आए थे,
स्टेशन के पास ही काफी जमीन और मकान मिल रहे थे,
पर उन्हें अपने गुरु का जैसा आदेश मिला वैसा ही उन्होंने किया।
सप्तऋषि आश्रम में अनुसूया कुटी में ठहरे।
जब तक शांतिकुंज में उनके ठहरने लायक स्थान नहीं बना, तब तक गुरुदेव जब भी आते उसी कुटी में ठहरते थे। सप्तऋषि आश्रम के पास की यह भूमि जो उस समय बहुत दलदली थी, खरीदी और इसी भूमि पर उन्होंने निर्माण करने की ठानी। श्री रामचंद्र सिंह जी को उन्होंने कहा, एक साइकिल किराए से ले लो। किसी ठेकेदार को देखकर आते हैं। फिर उनको साथ लेकर चांदवानी बिल्डर्स ज्वालापुर के पास गए। उन्हें लेकर आए, जमीन दिखाई, पूछा, यहाँ निर्माण कैसे हो सकेगा, बताओ। चांदवानी जी ने जमीन देखकर कहा, यहाँ तो निर्माण करना बहुत मुश्किल होगा और महंगा भी।
आप कोई और जमीन देख लीजिए। गुरुजी ने कहा, हमें तो यहीं बनाना है, आप बताइए कैसे होगा। चांदवानी जी ने कहा, आपको यहीं बनाना है तो आप हमें 6 महीने का समय दीजिए, तब हम बना सकते हैं। पूज्यवर बोले, आप 6 महीने या 1 वर्ष, पर हमें बनाना यहीं है।
बताओ कैसे बन सकेगा। चांदवानी जी ने कहा, हम यहाँ यूकेलिप्स के पेड़ लगाएंगे, उससे पानी सुखाएंगे, तब निर्माण हो सकेगा। गुरुजी ने कहा, ठीक है, जैसा आप उचित समझें। फिर यहाँ 1000 यूकेलिप्स के पेड़ लगाए गए।
तब कहीं जाकर जमीन का कुछ पानी सूखा और ईंट गारा रखने लायक जगह बनी।
फिर यहाँ निर्माण कार्य संपन्न किया गया।
चांदवानी जी बताते हैं कि निर्माण के बाद भी गुरुजी उनके पास अक्सर आया करते थे,
उनसे पारिवारिक संबंध बन गए थे।
गुरुजी उनके घर भी आया करते और सब जनों के हाल चाल पूछते,
सबको प्यार आशीर्वाद लुटाते। शांतिकुंज में उस समय कार भी आ गई थी, परंतु वे फिर भी रिक्शे से ही उनके पास आते जाते, ऐसे सादगी संपन्न थे पूज्य गुरुदेव।
ऐसे ही सन 1982 की बात है,
खड़खड़ी में श्री रामकिंकर उपाध्याय जी की कथा का आयोजन था। आयोजकों ने शांतिकुंज में भी निमंत्रण भेजा था।
एक दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा, उन्होंने बहुत बार बुलाया है, उसमें चलना है। उस समय तक शांतिकुंज में कार नहीं थी,
सामान ढोने वाला एक टेम्पो था, उसे बुलवाया। उन दिनों भास्कर जी चालक थे, गुरुजी उनके बगल वाली सीट में बैठ गए, हम 2-3 लोग पीछे बैठ गए।
जब उसे स्टार्ट किया तो वो बंद हो गया।
गुरुजी बोले, अरे बच्चों, उतरो, धक्का लगाओ। धक्का लगाकर गाड़ी को स्टार्ट किया और उस आश्रम में पहुंचे जहां कथा हो रही थी। कथा चल रही थी, गुरुजी बोले, देखो कथा चल रही है, चुपचाप चलकर पीछे बैठ जाना। उनकी स्वयं की महानता इतनी बड़ी कि स्वयं भी चुपचाप हमारे साथ पीछे बैठ गए। व्यासपीठ से उस युग के सबसे बड़े विश्व प्रसिद्ध कथावाचक श्री रामकिंकर उपाध्याय जी ने देख लिया।
उन्होंने कथा को विराम दिया और मंच से कहा, हम सबका सौभाग्य है कि हमारे देश के महापुरुष संत हमारे बीच आए हैं,
जिन्होंने गायत्री और यज्ञ को जन जन तक पहुंचाया है,
जिनके लाखों करोड़ों शिष्य हैं, भक्त हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो मंच पर आ जाएं। भीड़ मुड़कर देखने लगी, कौन आया, पर गुरुजी तो सबसे पीछे बैठ गए थे,
दिखाई नहीं पड़े। गुरुदेव ने हाथ जोड़कर संकेत किया कि मैं ठीक हूँ, आप कथा प्रारंभ करिए। लेकिन रामकिंकर जी ने कहा, जब तक आप आगे नहीं आएंगे मैं कथा प्रारंभ नहीं करूंगा। गुरुजी आगे जाकर अग्रिम पंक्ति में बैठ गए,
मंच पर फिर भी नहीं बैठे। रामकिंकर जी गुरुदेव को पहचान गए थे, अतः कथा कहते कहते उन्होंने कहा, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य का दिन है। देश विदेश में जिनकी कथा मैं कहता आया हूँ, आज वो स्वयं मेरी कथा श्रवण करने के लिए मेरे सम्मुख बैठे हैं।
महापुरुष कितने अव्यक्त होते हैं, यह पूज्यवर के पास ही देखने को मिला।
उनकी सादगी से हर कोई चकित हो जाता था। उनकी सादगी देखकर पहली नजर में तो किसी को विश्वास ही नहीं होता था कि वे ही गुरुजी हैं।
एक बार लंदन से एक व्यक्ति गुरुजी से मिलने आया, मैं ऊपर ही बैठा था, साथ में 2-3 व्यक्ति और थे।
उस समय कोई भी कभी भी गुरुजी के पास चला जाता था, वह भी ऊपर आया, पर गुरुजी को वह पहचानता नहीं था।
आकर गुरुजी से बोला, मैं गुरुजी से मिलना चाहता हूँ। गुरुजी ने उत्तर दिया, मुझे ही लोग गुरुजी कहते हैं। उनकी सादगी व वेश विन्यास देखकर उसे विश्वास ही नहीं हुआ, शायद मन में किसी जटाजुटधारी की कल्पना थी। अतः उसने फिर कहा, मैं पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी से मिलना चाहता हूँ। गुरुजी ने उत्तर दिया, हाँ भाई, मैं ही आचार्य श्रीराम शर्मा हूँ।
कुछ देर तक तो वह हैरानी से उन्हें देखता ही रह गया,
फिर बोला, इतने बड़े महापुरुष,
इतने सरल, इतने सीधे साधे भी हो सकते हैं क्या। उसने उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों में ही बैठ गया।
उठाए नहीं उठ रहा था, पूज्यवर ने ही स्नेहपूर्वक उसे उठाया। उसने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाया और उनकी सहजता को हृदय में धारण कर शांतिकुंज से विदा हुआ। श्रीमती श्रीदेवी यादव। श्रीमती श्रीदेवी यादव माताजी सन 1962 में गुरुदेव से मिली, मथुरा आती जाती रही। सन 1982 में गुरुदेव के बुलाने पर पूर्ण रूप से शांतिकुंज आ गईं। गुरुजी से बातचीत। श्रीदेवी अम्माजी बताती हैं कि 1958 का यज्ञ होने वाला था, उसके लिए गायत्री मंत्र लेखन अभियान चल रहा था।
एक राव जी साहब हमारे घर आते थे, उनके कहने पर मैंने मंत्र लेखन किया, पर कुछ दिनों बाद ही राव जी का देहांत हो गया और हम उस यज्ञ में शामिल नहीं हो पाए। बाद में सन 1962 में पिताजी के साथ में मथुरा में गुरुजी से मिली।
गुरुजी ने हालचाल पूछा।
बहुत कम उम्र में ही मेरे पति चल बसे थे।
गुरुजी ने कहा, बेटी तेरा मन नहीं लगता तो तू मेरे पास आ जाया कर, फिर तो हमारा आना जाना लगा ही रहता। गुरुजी खूब बातचीत करते और खूब प्यार देते। सत्र पूरा होने के बाद भी हम कई कई दिन तक गुरुजी के पास गायत्री तपोभूमि मथुरा में रुक जाते थे।
मैं गुरुजी के पास बैठी रहती, वे अपना लेखन, लोगों से मिलना जुलना आदि काम करते रहते।
एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया।
मैं गुरुजी के पास ही तख्त पर बैठ गई।
गुरुजी ने कहा, तुम रामायण पढ़ती हो सो ठीक है,
गीता पढ़ती हो वो भी ठीक है,
द्वादश अक्षरी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः
जपती हो ये भी अच्छी बात है,
एक माला गायत्री मंत्र की और कर लिया करना। मैंने कहा, गुरुजी मैं 24 बार तो जपती हूँ। गुरुजी बोले, एक माला कर लिया करना। फिर गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया और रामायण की कुछ चौपाइयाँ बोलने लगे, परपति रति करई रौरव नरक कलप सत पर ही आदि आदि, और बोले, तू इन सब का चिंतन क्यों करती रहती है?
विधवा होने के कई एक कारण होते हैं, तू ऐसा सब क्यों सोचती रहती है? मैं गुरुजी की बात सुनकर हक्की बक्की रह गई।
गुरुजी मन की बात भी पढ़ लेते हैं, मेरे हृदय की सब बात जान रहे हैं। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मेरा भविष्य कैसा निकलेगा? गुरुजी बोले, तेरा भविष्य मैंने बनाकर रख दिया है, तू चिंता मत कर।
एक दिन बात करते करते मैंने गुरुदेव के दोनों हाथ पकड़े और पूछा, गुरुजी आप कौन हैं?
गुरुजी बड़े सहज ढंग से अपनी ओर इशारा करते हुए बोले, देखती नहीं मैं कौन हूँ? मैंने कहा, गुरुदेव सब तो आपको भगवान कहते हैं। गुरुजी बोले, हाँ बेटा तेरा तो मैं भगवान ही हूँ,
तुझे भगवान से मिलाऊंगा और भगवान के कंधों पर बिठाऊंगा भी। यह कहकर गुरुदेव हंसने लगे, पर उस दिन से आज तक मैं जब ध्यान करती हूँ तो मुझे गुरुजी ही दिखाई देते हैं, गायत्री माता या और कोई देवी देवता नहीं।
एक बार मैं और पिताजी शांतिकुंज आए हुए थे। पिताजी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी हमारा तो समय अब नजदीक है, आप इसका ध्यान रखना। गुरुजी बोले, हाँ मैं ध्यान रखता हूँ,
अब मैं क्या करूँ क्या दूँ? देने के लिए?
हाँ, देने लायक जो है वो दूंगा, साहस दूंगा, धैर्य दूंगा। वास्तव में मैंने देखा, मेरे पास हिम्मत बहुत है। दिव्य आनंद। गुरुजी बार बार आने के लिए कहते थे, सो पिताजी की मृत्यु के बाद सन 1982 में मैं शांतिकुंज आ गई। एक बार मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मेरा ध्यान रखना। गुरुजी बोले, बेटा मैं धोखा देने वाला आदमी नहीं हूँ,
तुमने मेरा पल्ला पकड़ा है तो निराश नहीं होने दूंगा,
किसी को तुझे सताने नहीं दूंगा। ध्यान तो मैं तेरा पहले भी रखता था, अब विशेष कर रखूंगा। सूक्ष्म शरीर से 100 वर्ष तक तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कान में उंगली डाली। मुझे बड़ी दिव्य अनुभूति हुई,
ऐसा लगा जैसे मेरे चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया।
हर क्षण गुरुदेव की निकटता का आभास होता रहा, ऐसा लगता रहा जैसे सर्वत्र गुरुजी ही गुरुजी छाए हैं।
3 दिन तक मैं उस दिव्य आनंद अलौकिक आनंद की मस्ती में डूबी रही।
हर पल संरक्षण। एक बार मैं बद्रीनाथ गई। पिताजी बद्रीनाथ का विवरण सुनाते थे।
रास्ते में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, गहरी खाइयां हैं। मैं सोचती थी जाने कैसा लगता होगा। बस में से जब मुझे गहरी खाई दिखाई दी तो मुझे बहुत डर लगने लगा,
सांस फूलने लगी, घबराहट होने लगी।
इतने में मुझे लगा जैसे खिड़की में गुरुजी खड़े मुस्कुरा रहे हैं। मैंने गौर से देखा तो ओझल हो गए। फिर थोड़ी देर में लगा जैसे खिड़की में गुरुजी हंस रहे हैं।
3-4 बार गुरुजी मुझे खिड़की में हंसते मुस्कुराते दिखाई दिए।
उनकी इस आंख मिचौनी में और उनके दर्शन करके मेरा मन इतना प्रसन्न हो गया कि मेरा सारा डर कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चला।
फिर रास्ते भर मुझे डर नहीं लगा। हमारे पिताजी के पास काफी जमीन जायदाद थी।
पिताजी की अकेली संतान होने के नाते मैं उसकी अकेली वारिस थी। पिताजी के बाद सब संपत्ति मुझे मिलेगी, यह सोचकर हमारे ही परिवार के कुछ लोगों ने मेरी हत्या करने की साजिश रची। वे लोग मुझे कभी कभार कह भी देते थे कि अकेली वारिस हो कोई मार डाले तो, पर मेरे मन में शंका तो दूर ऐसा कोई ख्याल भी नहीं आया कि इनकी बात में कोई सच्चाई भी हो सकती है।
सन 1977 में परम वंदनीय माताजी का पत्र आया। लिख था, तू शांतिकुंज आ जा,
गुरुदेव चिंता करते हैं, कहते हैं छोरी वहां अकेली है कोई गला घोंट देगा। कुछ दिनों बाद वीरेश्वर भाई साहब कार्यक्रम के लिए हमारे क्षेत्र में आए तो उनके पास भी संदेश दिया और कहा, लड़की वहां अकेली पड़ी है, देखकर आना और उसे आने के लिए कहना। मैंने भाई साहब को शांतिकुंज के लिए कुछ अनुदान दिया और कुछ दिन में अपना काम समेट कर आने का संदेश दिया।
सप्ताह भर बाद मैं शांतिकुंज आ गई और आने के कुछ ही दिनों बाद मुझे समाचार मिला कि हमारे घर की एक बहू की हत्या हो गई है।
बाद में उस बहू के मायके वालों के द्वारा यह रहस्य खुला कि पैसा तो मुझे मारने के लिए दिया गया था और धोखे से उनकी बेटी की हत्या हो गई। इस प्रकार पूज्य गुरुदेव ने दूर रहते हुए भी आने वाली विपत्ति की ओर संकेत ही नहीं किया बल्कि मेरी रक्षा भी की।
सन 1981 में एक दिन शिकोहाबाद जी फिरोजाबाद में हमारे पैतृक घर में डाकू आ गए।
घर में पिताजी, मैं और एक दो लोग और थे।
लगभग रात हो गई थी।
हम लोग चारपाई पर मच्छरदानी लगाकर सोने ही जा रहे थे कि डाकू घर में घुसे। उनके हाथ में बंदूकें थीं। सामने के रास्ते से पुलिस वाले अक्सर आया जाया करते थे। वे लोग कभी कभी पानी पीने के लिए घर में भी आ जाते थे।
हमने सोचा पुलिस वाले होंगे।
इतनी देर में वह लोग आंगन में हमारी चारपाई के पास आ गए, मच्छरदानी खींचकर एक तरफ कर दी और बंदूकें तान कर बोले, हम आप लोगों को कुछ नहीं कहेंगे, बस पानी पिला दो। जब तक हमने उन्हें पानी पिलाया उन्होंने घर का जायजा ले लिया कि घर में कितने लोग हैं। दो लोग हमारे ऊपर बंदूकें ताने खड़े रहे। बाकी लोगों ने जो कुछ उनके काम की चीज घर में मिली उसे बांध लिया। घर में 15-20 तोला सोना रखा था।
जहां वह रखा था वहीं काष्ठ पात्र आदि पूजा के बर्तन रखे थे। डाकुओं ने सोचा यहां तो सब पूजा का सामान है और उस अलमारी की ज्यादा छानबीन नहीं की। इस प्रकार जेवर आदि सब बच गए। घर में कुछ विशेष सामान था नहीं, सो डाकुओं को ज्यादा कुछ मिला नहीं।
वे पिताजी के पास आकर बोले, इतना बड़ा घर है, पैसा भी खूब होगा, बताओ कहाँ है। पिताजी ने कहा, मैं तो अपने पास कुछ रखता नहीं, ये मेरी बेटी है, इसी को सब दे देता हूँ, इसी से पूछ लो। उन्होंने मुझसे पूछा, माताजी पैसा तो बहुत होगा आपके पास, कहाँ रखा है। घर में कुछ विशेष पैसा तो था नहीं। मैंने उन्हें सब सच सच बता दिया कि पैसा तो हमारे पास बहुत है पर घर में नहीं है। सामने जो इंटर कॉलेज है कुछ पैसा उसको बनवाने में लगा दिया।
कुछ पैसा शांतिकुंज हरिद्वार में हमारे गुरुजी रहते हैं उन्हें दे दिया।
अपने खर्चे के लिए जो रखा है वह बैंक में जमा है। घर खर्च के लिए थोड़ा सा पैसा घर में है, वह सामने कोठरी में पूजा के पास डब्बे में पड़ा है।
वह पैसा डाकुओं को पहले ही मिल गया था।
मेरी बात सुनकर डाकुओं में से एक ने कहा, सबको कमरे में बंद कर दो। इतने में किसी एक डाकू की नज़र छत पर पड़ी। उसे लगा वहां कोई है। उसने पूछा, घर में और कौन कौन है। हमने कहा, हमारे अलावा और कोई नहीं है। वह बोला, छत पर कौन है। हमने कहा, कोई नहीं है। पर डाकुओं को छत पर कोई सफ़ेद धोती कुर्ता पहने हाथ में बड़ा सा डंडा लिए खड़ा दिखाई दे रहा था।
वे बोले, छत पर सफ़ेद धोती कुर्ते वाला कौन है,
ऊपर जाने का रास्ता किधर है। और घर के एक व्यक्ति को आगे करके वे सीढ़ियों की तरफ गए। वे सीढ़ियां चढ़ ही रहे थे कि पता नहीं क्या हुआ, वे हांफते हुए और डर के मारे कांपते हुए उल्टे पैरों भागे और भागते ही चले गए। घर का जो कुछ सामान उन्होंने पोटलियों में बांधा था उसे भी थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे छोड़ गए।
इस प्रकार पूज्य गुरुदेव ने घर में घुस आए डकैतों को भगाया। डॉक्टर ओपी शर्मा एवं डॉक्टर गायत्री शर्मा। डॉक्टर ओपी शर्मा जी एवं डॉक्टर गायत्री शर्मा 1980 में पूज्य गुरुदेव के संपर्क में आए।
उसके बाद लगातार संपर्क में रहे, टोलियों में भी जाते रहे। 1989 में डॉक्टर
ओपी शर्मा जी स्थायी रूप से शांतिकुंज आ गए। मन की बात सुनने वाले हमारे गुरुदेव। बात जनवरी 1981 की है। परम पूज्य गुरुदेव सुल्तानपुर गायत्री शक्तिपीठ व गायत्री प्रज्ञापीठ में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम हेतु आए थे।
वहां से उन्हें लखनऊ जाना था। हम दोनों के मन में प्रेरणा हुई कि गुरुजी को लखनऊ तक विदा करने चला जाए।
उन दिनों हम दोनों महिला और पुरुष चिकित्सालय में अधीक्षक के पद पर तैनात थे, सो छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन उस दिन रात में CMO
से बात हुई और छुट्टी मिल गई।
हम दोनों जब विदा स्थल पर पहुंचे तो वहां बहुत भीड़ थी। हम दोनों दूर से ही एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर गुरुवर को देखने लगे।
हमने सोचा, जैसे ही गुरुदेव उठेंगे हम अपनी कार में बैठकर उनकी गाड़ी के पीछे चल देंगे।
गुरुदेव को लेने के लिए लखनऊ से कई गाड़ियां आई थी।
हम सोच रहे थे कि यदि गुरुदेव हमारी कार में बैठकर चलते तो हमारा कितना सौभाग्य होता। गुरुदेव के उठते ही हम अपनी कार के पास पहुंच गए। गुरुदेव आए और हमारी कार के पास आकर खड़े हो गए और बोले, हम इसी में बैठेंगे।
डॉक्टर शर्मा जी ने कार का दरवाजा खोला और गुरुदेव उसमें बैठ गए। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था।
मन ही मन हम सोच रहे थे कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो गुरुवर ने हमारे मन की बात बिना कहे ही पढ़ ली और हमारी अभिलाषा पूरी की। रास्ते में एक जगह गुरुदेव ने कार रोकने को कहा। कार जहां रुकी थी वहां दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था, पर अचानक पता नहीं कहां से 15-20 लोग आरती का थाल लेकर आ गए।
उन्होंने गुरुवर की आरती उतारी। गुरुदेव ने उन सभी से घर वालों के नाम ले लेकर सबका हाल चाल पूछा।
हमें आश्चर्य हुआ कि अभी तो कोई नहीं था, अचानक ये लोग कहां से आ गए और गुरुदेव को इनके घर वालों के पत्नी बच्चों के जो यहां हैं भी नहीं, नाम कैसे याद हैं।
यह सब देखकर हम उनकी सर्वज्ञता के आगे नतमस्तक थे। पत्ती पत्ती में गुरुदेव।
गायत्री दीदी बताती हैं कि अपने पिता के घर में बचपन में मैं एक फोटो टंगी देखती थी जिसमें एक कदम के पेड़ के नीचे राधा कृष्ण खड़े थे और उस वृक्ष के प्रत्येक पत्ते में भी वही राधा कृष्ण बने थे। मैं सोचती थी कि पत्ती पत्ती में भगवान कैसे हो सकते हैं।
इसकी स्पष्ट अनुभूति मुझे उस समय हुई जब हम गुरुदेव को लखनऊ छोड़कर वापस लौटे। परम पूज्य गुरुदेव को विदा करके डॉक्टर
शर्मा जी और मैं जब सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए तो मन बहुत भारी था, लग रहा था जैसे कुछ छूटा जा रहा है।
प्रातःकाल का समय था और पूज्य गुरुदेव की बहुत याद आ रही थी।
भारी मन से रास्ते के पेड़ों को देखते हुए जा रही थी कि अचानक अंतःकरण में प्रेरणा आई कि गुरुवर तो पत्ती पत्ती में विराजमान हैं और मुझे ऐसा प्रतीत भी होने लगा ठीक वैसे ही जैसे बचपन में पत्ती पत्ती में राधा कृष्ण को देखती थी।
यह भाव इतना प्रबल था कि आंखों से अश्रु झरने लगे। डॉक्टर
शर्मा जी ने पूछा, रो क्यों रही हो? हमने कहा, भगवान गुरुदेव के रूप में आए हैं, वह पत्ती पत्ती में विराजमान हैं, ऐसा हमें अनुभव हो रहा है और ये देख के नहीं खुशी के आंसू हैं कि भगवान ने गुरुवर के रूप में हम लोगों को दर्शन दिया है। यह अनुभूति इतनी स्पष्ट इतनी सजीव थी कि इसे वाक शक्ति से बताया नहीं जा सकता। उसी दिन अंदर से संकल्प जागा कि दोनों या दोनों में से कोई एक परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में आजीवन समर्पित होकर उनका कार्य करेंगे। बच्चे छोटे थे, एक पहली में और दूसरा पांचवीं में पढ़ रहा था और मुझे निर्देश हुआ कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करने पर ही आएं। यह अनुशासन मानकर एक के आने का दृढ़ निश्चय हो गया और डॉक्टर
शर्मा जी शांतिकुंज आ गए और हम वहीं रहकर पारिवारिक जिम्मेदारी, चिकित्सक की नौकरी और गुरुवर का कार्य करते रहे।
कण कण में उनके स्वरूप की वह अनुभूति आज भी ज्यों की त्यों मन में सजीव है। हम भगवान से लेना जानते हैं।
द 27th of April 1981 को बस्ती में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के पश्चात पूज्यवर जब लोगों से मिलने के लिए बैठे तो हमसे बोले, तुम हमारे पास खड़े रहना और लोगों को दवा लिख देना। हम सोचने लगे, हम क्या दवा लिखेंगे। खैर हम उनके पास खड़े हो गए। लोग अपनी अपनी समस्या कहते और गुरुदेव आशीर्वाद दे देते। कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित था तो उसे भी गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद निवास स्थान पर जाकर हमने गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव, बीमारी कैसे ठीक होगी। गुरुदेव ने कहा, बेटा कर्ता तो भगवान है।
लोग भगवान से लेना नहीं जानते, हम उनसे लेना जानते हैं, हम उनसे कहते हैं वो करते हैं। उनके यह शब्द सुनते ही मेरी शंका का समाधान हो गया और मुझे MBBS में पढ़े हुए वे शब्द याद हो आए। हॉट कैसे कार्य करता है यह विज्ञान का विषय है, लेकिन हॉट किसने बनाया?
सर्जन कट्स एंड गॉड यूनाइट्स। 1982 जनवरी में मैं 15 दिन के प्रज्ञा पुराण प्रशिक्षण हेतु सुल्तानपुर से शांतिकुंज आया था। 5-6 दिन बाद लगभग 9 बजे के करीब हम गुरुदेव के पास बैठे थे कि श्री रामजनम वर्मा जी अपने 8 वर्ष के बेटे को लेकर आए और कहा, गुरुजी इसकी सांस फूलती है। गुरुदेव ने कहा, अभी से सांस फूलेगी तो क्या होगा, हम अपने कंधों पर ले चलेंगे, गायत्री माता से कह देंगे ठीक हो जाएगा। उस समय पूज्यवर कमरे में टहल रहे थे, थोड़ा रुके और कागज पर लिखा सितोपलादी चूर्ण, एक चम्मच सुबह शाम, आशीर्वाद और अपना हस्ताक्षर करके दे दिया।
उस घटना को देखकर मन में आया, यह कैसे ठीक हो जाएगा जबकि इसे रिह्यूमेटिक हॉट की बीमारी जान पड़ती है।
पूज्यवर ने मेरे मन की बात शायद पढ़ ली और मुझे कहा, माताजी के पास चले जाओ। माताजी ने मुझे चाय पिलाई और बोली, तुम्हें गोष्ठी लेने पशुलोक जाना है। बात मेरी समझ में आ गई कि मुझे क्यों भेजा जा रहा है। श्री रामजनम वर्मा जी पशुलोक में ही रहते थे। वहां जाकर मैंने सबसे पहले बच्चे का परीक्षण किया। उसे वही दिल की बीमारी निकली जो मैंने सोची थी। 15 दिन बाद मैं सुल्तानपुर वापस आ गया।
कुछ वर्षों बाद जब रामजनम वर्मा जी से बच्चे की बीमारी के विषय में चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि वह तो पुनर्तः स्वस्थ है, कोई दवा नहीं ले रहा है और उन्होंने गुरुवर की दवा के अलावा और कोई दवा भी नहीं की। आज वह बालक इंजीनियर है।
प्राण शक्ति अनुदान क्या है, इसे मैंने पहली बार अनुभव किया।
बाद में तो मैंने ऐसे बहुत से केस देखे जब पूज्यवर ने मात्र आशीर्वाद से ही रोग को ठीक कर दिया।
जीवन दान देने वाले महाकाल। डॉक्टर गायत्री शर्मा बताती हैं कि बचपन में एक दिन मेरी माँ मेरे बड़े भाई की कुंडली एक पंडित जी को दिखा रही थी।
हमने कहा, पंडित जी मेरी भी कुंडली देखकर बताइए हम क्या बनेंगे। पंडित जी ने मेरी माँ से कहा, बिटिया की उच्च शिक्षा और राजयोग है, लेकिन भरी जवानी में मृत्यु योग है। बात आई गई हो गई। 1982 में हम पूज्य गुरुदेव के समक्ष बैठे थे। परम पूज्य गुरुदेव ने पूछा, तुमने डॉक्टर साहब को रोटी बनाना और चाय बनाना सिखाया या नहीं? हमने सोचा, शायद इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें शांतिकुंज में अकेले रहना है, लेकिन उनकी इस बात का रहस्य तब खुला जब डॉक्टर
साहब को पूरी गृहस्थी संभालनी पड़ी।
घटना अप्रैल 1983 की है।
हम जिला सुल्तानपुर में तैनात थे। डॉक्टर शर्मा जी टोली में चल रहे थे। हमने नवरात्रि अनुष्ठान दूध केला पर किया और पूर्ण आहुति हेतु कार्यकर्ताओं के आग्रह पर गायत्री शक्तिपीठ गए, जबकि हमें लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन हेतु अमेठी जाना था। पूर्णाहुति के बाद अचानक मेरी साड़ी में आग लग गई।
मैं वहीं यज्ञशाला में करीब 50% जल गई।
यह घटना प्रातः 6:30 बजे की थी। मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया।
मन में भाव आया कि मरना तो एक दिन सभी को है, कोई बात नहीं, लेकिन यदि हम मर गए तो फिर बच्चे बनकर भगवान का काम कैसे कर पाएंगे।
जैसे ही आग बुझी मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे तीव्र प्रकाशमय सूर्य मेरे अंदर समा गया हो। इधर जो लोग उस समय शांति कुंज में थे वह बताते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव अचानक प्रणाम से उठकर ऊपर चले गए और जब नीचे आए तो वंदनीय माताजी से बोले, बेटी गायत्री पर दुर्घटना घट गई है, यदि कोई समाचार लेकर नहीं आता तो पता लगाइए।
सुल्तानपुर से हमें तुरंत लखनऊ बलरामपुर चिकित्सालय में शिफ्ट किया गया।
हालत गंभीर थी। डॉक्टर ए सी राय से हमारे भाई ने पूछा, कब तक खतरे से बाहर हो जाएंगी? उन्होंने कहा, 4-5 दिन तक कुछ कहा नहीं जा सकता। उसी दिन शाम को बड़ी बहन ने चिट्ठी लिखकर बेटे द्वारा परम पूज्य गुरुदेव को सूचना पहुंचाए।
पूज्यवर ने कहा, एक एक करके बताओ कहां कहां जली है।
वे नंबर गिनते गए। जब पूरा समाचार सुन लिया तो बोले, अब तुम जाओ, तुम्हारा काम समाप्त और मेरा काम शुरू। प्रातःकाल तक मेरी हालत में काफी सुधार हो गया था। डॉक्टर राय साहब जो उस समय बलरामपुर चिकित्सालय के निर्देशक थे बोले, ताज्जुब है,
इतनी जल्दी इतना सुधार कैसे हो गया।
डॉक्टर ओ पी शर्मा जी बताते हैं कि 3 दिन बाद ही मुझे परम पूज्य गुरु देव का पत्र मिला, बेटी गायत्री को नया जन्म प्रदान हुआ। जीवन तो उन्होंने ही दिया लेकिन लिखा, तुम्हारी परमार्थ परायणता ने बेटी गायत्री की जान बचाई। प्राणदान देने वाले वे स्वयं थे, पर श्रेय किसी को भी दे देते थे।
हम सूर्य में व अखंड दीप में रहेंगे। 1987 नवंबर की बात है।
मैं टोली से लौटा था। जब गुरुदेव से मिलने गया तो गुरुदेव ने कहा, बेटा मैं सुखदेव हूँ। मैं चुप रहा और उनके वाक्य पर विचार करता रहा। रात में भी वही विचार चलता रहा। प्रातःकाल उपासना के समय प्रेरणा मिली कि गायत्री का सूर्य उपस्थान पढ़ो।
मैंने उसे पढ़ा। उसमें लिखा है, ऋषि सुखदेव जी कहते हैं, हमारी सारी साधनाएं पूरी हुई,
अब हम सूर्य में व्याप्त होकर कार्य करेंगे। अगले दिन मैंने गुरुदेव को संस्कृत का एक श्लोक सुनाया, तस्मात् योग समास्थाय। जब मैंने यह श्लोक सुनाया तो गुरुजी ने कहा, बेटा कहाँ पढ़ा है? मैंने गुरुदेव को बता दिया कि गायत्री का सूर्योपस्थान पुस्तक में पढ़ा है।
तब गुरुजी कहने लगे, बेटा जैसे सुखदेव जी ने पैदा होने पर माँ का स्तनपान भी नहीं किया और तपस्या करने लगे, वैसे ही बेटा हम भी तपस्या में लग गए हैं और उसी रूप में कार्य कर रहे हैं। एक दिन पूज्यवर ने कहा, शरीर छोड़ने के बाद क्षण भर के लिए हम निराकार हो जाएंगे, फिर उसी अखंड दीप की ज्वलंत लौ में समाहित हो जाएंगे, वही मेरी प्रतिमा होगी।
इसी बात को वर्ष 1988 जनवरी की अखंड ज्योति में पृष्ठ -28 पर उन्होंने लिखा भी, बदन बदलने के समय में अब बहुत देर नहीं है, परिजन हम लोगों का संयुक्त जीवन अखंड दीपक का प्रतीक मानकर उसे आत्मसत्ता की साकार प्रतिमा मानते रहें।
शरीर परिवर्तन की वेला आते ही यूं तो हमें साकार से निराकार होना पड़ेगा, पर क्षण भर में उस स्थिति से अपने को उबार लेंगे और दृश्यमान प्रतीक के रूप में अखंड दीपक की ज्वलंत ज्योति में समा जाएंगे। शरीरों के निष्प्राण होने के बाद जो चर्म चक्षुओं से हमें देखना चाहेंगे वे इसी अखंड ज्योति की जलती लौ में हमें देख सकेंगे। भविष्य में दोनों की सत्ता एक में विलीन हो जाएगी और उसे तेल बाती की पृथक सत्ताओं के एक ही लौ में समाविष्ट होने की तरह अद्वैत रूप में गंगा यमुना के संगम रूप में देखा जा सकेगा। आगे वे लिखते हैं, अभी हम लोगों के शरीर शांति कुंज में रहते हैं, पीछे वे इस परिकर के कण कण में समाये हुए रहेंगे, इसकी अनुभूति निवासियों और आगंतुकों को समान रूप से होती रहेगी।
अंतिम दर्शन। डॉक्टर
गायत्री शर्मा बताती हैं कि मई 1990 में ब्रह्मदीप यज्ञों की श्रृंखला में लखनऊ में ब्रह्मदीप यज्ञ के एक संयोजक मेजर खरे दूसरे श्री त्रिवेदी जी के अतिरिक्त हमें भी संयोजन का सौभाग्य मिला था।
प्रचार प्रसार से लेकर समयदानियों के नियोजन की भी जिम्मेदारी थी, परंतु मन परम पूज्य गुरुदेव पर ही लगा रहता था।
1 जून को न जाने क्या हुआ, मुझे गुरुदेव से मिलने की तड़प सी उठने लगी, कुछ बेचैनी सी होने लगी। हमने श्री अरविंद निगम जी से कहा कि हमें शांतिकुंज जाना है, हम रात्रि में जाकर गुरुदेव के दर्शन करके अगले दिन आ जाएंगे। उन्होंने कहा, बिना आरक्षण के आप कैसे जाएंगी? हमने कहा, कैसे भी हो हमें जाना है। मन में ऐसी प्रेरणा आ रही है जैसे गुरुदेव बुला रहे हैं। हम स्टेशन पहुंचे, टिकट ली और हमें रिजर्वेशन भी मिल गया।
हम शांतिकुंज आए, गायत्री जयंती के कार्यक्रम के बाद माताजी का प्रणाम हुआ और दोपहर तक यह घोषणा हो गई कि परम पूज्य गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया है।
हमारे डैक की सीमा नहीं थी, जब उनके अंतिम दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया तो इस बात का रहस्योद्घाटन हुआ कि क्यों अचानक ही गुरुवर से मिलने की तीव्र की इच्छा होने लगी थी।
उन्होंने स्वयं खींचकर हमें अपने पास बुला लिया था और अपने पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शनों की अभिलाषा पूरी की थी।
उस गायत्री जयंती पर्व पर अनेकों परिजन दूर दूर से हमारी ही तरह खींचे चले आए थे और यही कह रहे थे कि गुरुदेव ने ही हमें खींचकर बुलाया है। ज्ञातव्य है कि उन दिनों पूज्य गुरुदेव ने बहुत से परिजनों को स्वप्न के द्वारा और ध्यान में आकर विशेष प्रेरणाएं भी दी, किन्हीं किन्हीं को तो अपना शरीर छोड़ देने का स्पष्ट आभास भी कराया।
डॉक्टर अमल कुमार दत्ता।
डॉक्टर अमल कुमार दत्ता एवं श्रीमती श्रीपर्णा दत्ता पूज्यवर के निकटतम शिष्यों में से हैं। वे 1960 में मथुरा में पूज्य गुरुदेव के संपर्क में आए, उसके बाद वे लगातार उनके संपर्क में बने रहे।
1984 में पूज्य गुरुदेव के कहने पर स्थायी रूप से शांतिकुंज आ गए। डॉक्टर
अमल कुमार दत्ता जी के पास इतने संस्मरण हैं कि उनकी ढेरों डायरियां भरी पड़ी हैं। वे कहते हैं, गुरुजी माताजी की यादें, उनका प्यार ही हमारे जीवन की असल पूंजी है।
डॉक्टर दत्ता जी के पास जब भी आप बैठें, वे आपको कोई न कोई संस्मरण अवश्य सुनाएंगे। आप किसी भी विषय पर चर्चा करें, उनके संस्मरण कोश में उससे संबंधित निचका या अन्य किन्हीं परिजन से जुड़ा कोई न कोई संस्मरण अवश्य होगा। गुरुजी माताजी से परिचय।